ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆல், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் ஐத்ரேய உபநிஷத் பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்ய சைத்தன்யஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
பரபிரம்மா பரமேஸ்வர் சிருஷ்டிகே கணகணமே விராஜமான், सबके अंदर अंतर्यामी रूप से सबको प्रेरणा दे रहे, उन्हीं के असीम कृपा से हम लोग ऋग्वेद या ऐतरेय उपनिषद के ऊपर विचार कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताया था आत्मा ही था। उस आत्मा तत्व को समझाने के लिए, क्योंकि वो अवांग मनस गोचरा है, वाणी का विषय भी नहीं है और मन का विषय भी नहीं, क्योंकि हमारी वाणी भी वहीं तक पहुंच सकती है, मन के द्वारा हम चिंतन कर सकते हैं, मन भी वही चिंतन कर सकते हैं जो हम वाणी से बता सकते हैं, किंतु वो जो तत्व है वाणी का विषय और मन का विषय नहीं। जिसके द्वारा ये जो वाणी है सारे शब्द उच्चारण कर रहे, जिसके सत्ता के द्वारा ये मन चिंतन कर रहे, वो जो मन और वाणी उसको कैसा विषय कर सकते, संभव नहीं। इसलिए श्रुति माता को चिंता हो गई, ये जिज्ञासु साधकों को कैसा समझाओ, उस तत्व का बोध कैसा करो। इसलिए यहां अध्यारोप करके सृष्टि का प्रतिपादन कर रहे हैं। ये सारी जो सृष्टि जिससे हो रही है, ये सृष्टि को हम देख रहे, विलक्षण सृष्टि है। ये जो विलक्षण सृष्टि है इसका कोई ना कोई कर्ता है, भले वो शब्द के द्वारा आप नहीं बता सकते हैं, मन के द्वारा चिंतन नहीं कर सकते। इसलिए यहां अध्यारोप के द्वारा समझा रहे जिज्ञासु साधकों को, न तो ये सृष्टि को प्रतिपादन करने में श्रुति का तात्पर्य है, इस सृष्टि के द्वारा सृष्टि का जो कारण है उसके वो ले जाना है। तो इसीलिए यहां तक हम लोगों ने विचार किया था, तो उस परमात्मा ने पहले चार लोकों को उत्पन्न किया, चार से उपलक्षित 14 लोक। उसके बाद एक विराट का शरीर उत्पन्न किया उन्होंने, तो विराट का जो शरीर ऐसा तो उत्पन्न नहीं हुआ उनका भी, जैसा हमारा शरीर है, हमारा मूल पुरुष है वो ऐसा नहीं, जैसा हमारा स्थूल शरीर है उसी का ही वो स्थूल शरीर है, दोनों में कोई अंतर नहीं, बस इतना ही वेष्टि और समष्टि। जैसा हमारा स्थूल शरीर उत्पन्न हुआ वैसा ही उनका भी हुआ है। हमारा जो शरीर उत्पन्न हुआ है वह स्पष्ट बता दिया है गर्भोपनिषद में, जो प्रथम जो है शुक्र और शोणित एक रात्रि में वो कलाल रूप को धारण करता है, उसको कलल कहते हैं, और वही जो शुक्र शोणित है सातवें रात्रि में, सप्तम रात्रि में बुदबुदा रूप को धारण करते हैं, जैसे शवाला में जो आता है बुलबुला जैसा हल्का सा, और वही जो है पंद्रह रात्रि में एक पिंड रूप से धारण करता है। उसके बाद एक महीने के बाद वो कठिन हो जाता है और दूसरे मास में सबसे पहले शिर आता है, इसलिए शिर को प्रधान मान लिया है, मुर्दा कहते हैं। और तीसरे मास में हमारे जो पैर आते हैं और चौथे मास में है घुटने हैं, पेट है, कमर है, ये आकार उत्पन्न होता है। पांचवें मास में जो पेट की जो रीढ़ की हड्डी है वो आती है, और छठवें मास में मुख है, नाक है, नेत्र है, कान है, इसे कोई यहां बता रहे हैं, और सातवें मास में वो जीव से युक्त हो जाता है। ये जो हमारा है वैसा ही विराट भी वैसा ही, इसलिए यहां सबसे पहले उस परमात्मा ने एक पिंड बना दिया कठिन रूप से। पिंड कहां से बना दिया, अर्थात ये पंचभूत है, उनका ही सार के द्वारा उन्होंने एक पिंड बना दिया, और उस पिंड बनाने के बाद, पिंड कठिन होने के बाद उन्होंने विचार किया। विचार करने के बाद करते करते उसको शिर का आकार दिया, तो यहां नहीं दिकार है, यहां शिर केवल मुख से दिकार है श्रुति, किंतु आप ऊपर से समझ लीजिए। उस पिंड को सबसे पहले उन्होंने शिर का आकार दिया, और शिर का आकार देने के बाद पुनः उन्होंने विचार किया, शिर का तो आकार दिया किंतु अभी तक वो आगे जाके चलेंगे कहां से, इसलिए उन्होंने पांव भी स्थापित किया, पांव को भी बना दिया। यहां तो नहीं दिखा दिया, ऊपर से समझ लीजिए। और उसके बाद पांव बनाने के बाद घुटने हैं, पेट है, कमर ये बना दिया। उसके बाद वो पिंड जो है मजबूत रहे, स्थिर रहे, इसलिए रीढ़ की हड्डी भी बना दिया। और उसके बाद जो यहां मंत्र में बता रहे, चौथे मंत्र में आगे बता रहे, तो पहले मंत्र दे के उच्चारण कीजिए, उसके बाद हम लोग विचार करेंगे। तमभ्यतपत् तस्याभितप्तस्या मुखं निरभिद्यता यतांडम् मुकाद्वायो वाचो अग्ने नाशिके निदविद्धेताम् नाशिकाभ्याम् प्राणः प्राणाद्वायो अक्षिणे निरभिद्येता मक्षिभ्याम् चक्षो चक्षो आदित्या कर्णो निरभिद्येता कर्णाभ्याम् श्रोत्रम् श्रोत्रादिशः त्वं निरविद्येता त्वचो लोमानि लोमभ्या ओषधि वनस्पतयो हृदयं निरविद्यत हृदयात्मनो मनसा चंद्रमा नाभी निरविद्यत नाभ्या अपानो अपानान् मृत्युः शिश्नानिरभिद्यत शिश्नाद्रेतो रेतसा आपः। उस परमात्मा ने उस विराट को एक सुंदर रूप कैसा बना दिया, यहां श्रुति बता रहे हैं। तो यहां तक मैंने बता दिया, उन्होंने उस पिंड को सिर भी हाथ पैर और रीढ़ की जो हड्डी देने के बाद, उसके बाद उन्होंने विचार किया, ये मनुष्य आकार तो हो गया, अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, अभी भी अधूरापन है, क्योंकि ये जो पिंड आगे बोलेगा कहां से, देखेगा कहां से, गंदादि कैसा ग्रहण करेंगे, ये खूब विचार किया। उसके बाद तम अभ्यतपत, तम मतलब जो विराट पुरुष है, पंचीकृत से बनाया हुआ जो विराट पुरुष, पहले भी एक बताया था, एक विराट होता है समष्टि में, हम लोग वेष्टि में स्थूल विश्व होता है, और उस विराट पुरुष को उद्देश्य करके उस परमात्मा ने अभी तप अभ्यतपत मतलब संकल्प किया। जैसा कोई कलाकार है मूर्ति बनाता है, मूर्ति बनाते समय वो विचार करता है कैसा इस मूर्ति को सुंदर आकार दे, वैसे ही हम सब मूर्तिमान हैं, सब मूर्ति है, हम चेतन मूर्ति माना जाता है। मंदिर में जो है वो अचल मूर्ति है, हम लोग चल मूर्ति है, सबसे जो मूल मूर्ति है विराट पुरुष है, ये हमारा पूर्वज है, मूल पुरुष माना जाता है। तो इसलिए उस परमात्मा ने अर्थात ईश्वर ने उस विराट पुरुष को अर्थात जो बड़ा अंडा जैसा एक आकार जैसा पैरादि बनाया था शिरादि, उसको देखकर अभ्यतपत, अभ्यतपत का मतलब वहां संकल्प किया, बैठ के ध्यान नहीं लगा दिया, या तप का मतलब है चिंतन विचार। जैसा भी हम स्वाध्याय अर्थात प्रवचन सुन रहे, स्वाध्याय आदि सुन रहे, ये भी एक तप है, ऐसा नहीं आंख बंद करके बैठे हैं वही तप नहीं, ये जो विचार है चिंतन है ये भी एक तप है, क्योंकि मानसिक तप माना है, क्योंकि इसके द्वारा हमारा मन स्थिर हो जाता है विचार करते हुए, इसलिए इसको भी श्रेष्ठ तप माना है स्वाध्याय और प्रवचन का भी। तो इसलिए उन्होंने भी संकल्प किया, विचार किया परमात्मा ने, जैसा कोई शिल्पकार उस मूर्ति को देखकर विचार करता है इसमें क्या त्रुटि है, क्या क्या मुझे बनाना है, वो ध्यान लगाता है, यही तप है। थोड़ा सा इधर उधर हुए तो मूर्ति का शकल ही बिगल जाएगा, इसलिए जो चिंतन करता है ध्यान लगाता है वही उसका तप है और कोई तप नहीं। वैसे ही उस ईश्वर ने किया उस विराट रूप मूर्ति को देखकर, और उसके बाद अवितप्तस्य, इस प्रकार जो संकल्प किए हुए किसने, उस ईश्वर ने, उस पिंड से सबसे पहले मुकम निराविद्य था। देखिए सीधा मुख नहीं, मैंने पहले बताया था, सबसे पहले सिर उन्होंने बना दिया था, उसके बाद पांव भी बना दिया, उसके घुटने पेट भी बना दिया और रीढ़ की हड्डी भी बना दिया। ये मुख अर्थात ये सिर तैयार होने के बाद, अभी देखा ये सिर तो बना दिया, इन सिरों में कहां कहां इंद्रियों को एक करें, ये विचार किया। ध्यान करते करते सबसे पहले उससे मुख उत्पन्न हुआ, निराभिद्यता मतलब प्रकट हो गया। कैसे प्रकट हुआ, श्रुति एक दृष्टांत दे रही है। एक दृष्टांत होता है, एक दाष्टांत होता है। दृष्टांत कहते हैं दृष्टः निर्णीतः अंतः, जो वादी और प्रतिवादी दोनों को जो सम्मत हो उसको ही दृष्टांत कहते हैं। वादी को भी सम्मत हो, प्रतिवादी को सम्मत हो, उसको दृष्टांत कहते हैं। और उस दृष्टांत के द्वारा जो आपको समझाना है, जिस तत्व को, उसको समझाया जाता है। जैसा कोई अध्यापक बच्चों को जो गणित सिखाता है, पहले एग्जाम्पल लेता है, उस दृष्टांत के द्वारा समझाता है, उसके बाद गणित में प्रवेश करता है। वैसे ही यहां श्रुति बता रहे यतांडम, जैसा पक्षियों का जो अंडा है था अंडज, क्योंकि चार प्रकार के प्राणी होते हैं, एक होते हैं अंडज होते हैं, एक स्वेदज होते हैं, एक उद्विज होते हैं, एक जरायुज। उस परमात्मा ने जो सृष्टि की है मुख्य रूप से वहां दो प्रकार की सृष्टि की, एक जड़ और एक चेतन। जड़ात्मक सृष्टि बोलते हैं, एक चेतनात्मक सृष्टि, उसी को ये कहते स्थावर और जंगम। चेतनात्मक सृष्टि भी पुनः चार भाग में विभक्त किया है। तो सबसे पहले वहां उद्विज माना जाता है, ये उद्विज सृष्टि है। उद्विज का मतलब है पृथ्वी को फाड़ करके उत्पन्न होने वाले वृक्ष आदि। अभी किसी के मन में शंका हो सकती है वृक्ष कैसा चेतन है, हमारे जैसा चलते नहीं है, चेतन कैसा है। वह चेतन का मतलब है जो प्राणनादि क्रिया कर रहे वो चेतन है। जो प्राणनादि क्रिया करने वाला है उसी का नाम चेतन है। तो वृक्ष भी प्राणनादि क्रिया करते हैं, वृक्ष के अंदर भी प्राण है, निश्चय है, क्योंकि छांदोग्य उपनिषद में स्पष्ट कहा दिया श्वेत केतु को, आप किसी वृक्ष को ऊपर से कुलाड़ी से चोट मार दिया, वो रस को बहाते हुए धीरे धीरे मरता नहीं, कुछ दिन के बाद ठीक हो जाता। कारण क्या है, अर्थात उसके अंदर भी प्राण है, ये सिद्ध होता है। यदि पत्थर को आप यदि हथौड़ा से किनारे से तोड़ दीजिए, दोबारा जुड़ेगा नहीं, क्योंकि उसमें प्राण नहीं। तो वृक्ष में भी प्राण है, प्राणन क्रिया कर रहा है, इसलिए वो चेतन है, तभी वो बढ़ रहे हैं। ये उद्विज हो गया। चेतन में जो प्रथम सृष्टि है उद्विज है, और दूसरी जो सृष्टि है स्वेदज है। स्वेद कहते हैं पसीना, उस पसीना से उत्पन्न होते, जैसा खटमल है, खटमल बोल दो खाट का मल, जो खाट लगाते हैं मंचा, वो हमारा जो मल जमा होता है उससे वह जन्म लेता है। खटमल मत्कुणा कहते हैं संस्कृत में, इसलिए खाट का मल है, खाट का नहीं, हमारा ही मल खाट में जमा हो गया उससे वो बन गया खटमल। और जो सिर में जो माए का जू होते हैं वो भी स्वेदज है। तो स्वेदज है अर्थात पसीना से अथवा गंदगी से उत्पन्न होने वाला। ये जो उद्विज के अपेक्षा इनमें थोड़ा बुद्धि ज्यादा है। उद्विज है एक जगह से दूसरे जगह में नहीं जा सकते, चाहे तो आप उसको काटने के लिए जा रहे भयभीत वो भी हो रहे, दौड़ नहीं सकते। वृक्ष भी भयभीत होता ऐसा नहीं, किंतु वो दौड़ नहीं सकते। और जो स्वेदज है अपना प्राण बचाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह भी जाते, इसलिए उद्विज के अपेक्षा स्वेदज थोड़ा श्रेष्ठ है। तीसरा यहां बता रहे अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाले। जो अंडे से उत्पन्न होने वाले है पक्षी है सर्प आदि, उनको अंडज कहते हैं। स्वेदज के अपेक्षा इनमें थोड़ी बुद्धि ज्यादा है, उत्कृष्ट है, इनमें अंतकरण विकसित हो रहे अंडज में, चाहे तो पक्षी में हो सर्प आदि में। ये तीन प्रकार के हो गए, उद्विज है स्वेदज है अंडज, चौथा है जरायुज। जरायुज को भी दो भाग में किया, एक दो पैर वाले एक चार पैर वाले जरायुज में भी। तो इसलिए दो पैर वाले को भी वही कहा, चार पैर वाले माना शास्त्र ने। कभी आहार निद्रा भयमेतुनंच, जिसके अंदर विचार नहीं है, मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति माना। तो ये जो जरायुज है दो पैर वाले और चार पैर वाले, दो पैर वाले हो गए हम लोग, चार पैर वाले हैं गाय आदि, ये भी जरायुज है। तो इसलिए चार प्रकार की हो गया चेतन सृष्टि, सारी परमात्मा ने बना दिया। 84 लाख योनियों को इनके अंदर बूत गिना दिया जड़ और चेतन करके। तो इसलिए यहां बता रहे अंडज, जैसा अंडा होता है सबसे पहले वहां मुख निकलता है, वैसे ही उस परमात्मा ने एक अंडे के समान एक आकार दिया था विराट पुरुष। उस विराट पुरुष के सबसे पहले मुख उत्पन्न हुआ, और मुकाद वाग, और मुख से वाग, या वाग का मतलब वाग इंद्रिया का गोलक, तो गोलक मतलब जिह्वा। देखिए वाग इंद्रिया कहां रहती है हमारे, एक ऐसा है रसन इंद्रिया का भी आश्रय है, वाग इंद्रिया का भी आश्रय है, उसमें कर्मेंद्रिया भी है ज्ञानेन्द्रिया भी है, ये हमारी जिह्वा। जिह्वा में दोनों इंद्रिया है, बाकी सबका गोलक अलग अलग है, एक नहीं है।